राम नाम नीपते जय सोमरोय सनातनात्मा
क्लास के बाद में तो दिक्कत हो
रही है। आज भगवान शिव का आविर्भाव तिथि है। सदाशिव लोक में जो रहते हैं वही भगवान की इच्छा से शंकर रूप में शिव जी के रूप में आविर्भूत होते हैं। प्रथम लीला के समय सृष्टि जब प्रथम पहली बार हुई तो कृष्ण की इच्छा राज करने की हुई। वृंदावन के राक्षसस्थली में बंसीवट ने इच्छा करते उनके बाम अंग से श्रीमती राधिका जी निकली और दाहिने अंग से शंकर कौन शंकर गोपीश्वर महादेव। ये गोपीश्वर महादेव स्वयं सदाशिव तत्व है। ब्रह्म संहिता के अनुसार जब सृष्टि काल आरंभ हुआ जब भगवान सृष्टि करना चाहा उस समय में प्रपंच रचना के प्रारंभ में ही कृष्ण का एक अंश जो संकर्षण की वे संकर्षण अपने कारणदशाई रूप में उनसे एक तेज मिला। भगवान के अंश है कृष्ण के अंश संकर्षण के अंश है कर्णा दिशाई। तो जब भगवान की इच्छा होती है संकर्षण ही जगत के वो जीवों के बिंदु है। जब प्रपंच रचना करने की जब इच्छा होती है तो उन्हें से संकर्षण से कारण दशाई विष्णु और उत्पन्न होते हैं और उन्हें से एक ज्योति निकलती है। वो ज्योति क्या है उन्होंने इच्छा दी है जगत को तो वो उनकी इच्छा शक्ति है निकलती है। तो वो इच्छा शक्ति जो है वही जो ज्योति उत्पन्न हुई उसी का नाम है शंभु शिवलिंग। जब कर्णा दिशा यहाँ से जब ज्योति निकली अथवा इच्छा हुई जगत की सृष्टि हो तो वो जो ज्योति निकलती है
ज्योति रावत
संकर्षण From whom all kinds of jivas have come. So that sankarsan, from that sankarsan, three kinds of pushavatar comes. Pranabhushai, Pranabhushai,
फिर रोक साइड
फर्स्ट कारण दर्शाने के थ्री विशेष दैट वन शुड बी क्रिएटेड दिस डिजायर टेक्स ए शेप ऑफ लाइट लाइट that is yogi. And from this yogi, a shadow yogi comes. The shadow of that Brahma yogi is called Shivalinga. No? Linga mane chinna. Chinna mane kya? चिन्ह होता है चिन्ह माने क्या होगा भाई
मार्क
मार्क
साइन मार्क
वो जो लिंग है वो जो लिंग हुआ चिन्ह हुआ ज्योति से आभास के रूप में वह रामा देवी की छाया वैकुंठ भगत जो रामा देवी है उनकी छाया रूपा माया माया के प्रसव यंत्र में से ऊर्जा संयुक्त होता है उस सृष्टि को लिंग जो है
माया
की जब माया देवी की छाया से माया है
रमा
वो है योनि और उसमें वो लिंग का जब भी संयोग होता है वो भी चिन्ह है माया का वो चिन्ह है योनि और वो शिवलिंग जो है वो भी कर्णाधिशाही का वो भी आभास वो लिंग है दोनों के मिलन से अर्थात माया के और
शिवलिंग
के मिलने से और भी इसको ठीक से समझ पुरुष है कर्णाधिशाही विष्णु उन्होंने इच्छा की जगत की सृष्टि तो उनकी इच्छा से दो प्रकार की प्रकृति उत्पन्न होगी माया एक निमित्त और एक
उपादान
ये पुरुष जो है ये निमित्त और उपादान के द्वारा सृष्टि होती करते हैं कोशिश करते हैं उनकी इच्छा तो निमित्त और उपादान से और जो निमित्त है वो माया भगवान की इच्छा और उसी को कहते हैं योनि उसी को योनि कहते हैं निमित्त जो है वो माया है अर्थात इच्छा शक्ति जो कहा ना वो है माया वो निमित्त है इच्छा के बिना काम नहीं होगा इसलिए मूल चीज वो है मैंने मैंने लाठी से सांप को मारा मैंने मारा कैसे मारा लाठी से ये उपादान या मैंने कुलाल ने कुलाल मैंने
कुंभकार
ने बहुत सी चीजों के द्वारा बना मिट्टी का सूत्र मिट्टी पानी
चक्र
दंड उपादान हुआ और उसकी इच्छा क्या हुई
निमित्त
तो इस तरह से निमित्त है माया और वही है योनि भगवान की इच्छा प्रधान है ये और उपादान क्या है शंभु लिंग शंभु अर्थात लिंग और किसकी इच्छा महाविष्णु प्रथम पुरुषावतार कर्णोदक्षाय उनकी इच्छा उन्हीं को कहते हैं पुरुष तो ये पुरुष निमित्त और उपादान के द्वारा जगत की सृष्टि करता है अब हम कह तो देते हैं आप समझना पड़ता है एक जरा समझाइए
Very, very complicated thing. I would like to explain it. First Purush. Karana Purush and Vishnu.
You can come here,
I begged the lotus feet of Gurudev so that I may become able to explain something which is most complicated and not coming and comprehending even in my mind. Anyway, the important thing Maharaj is saying that Ichha Shakti, that is the desire of first Purush, that is called Mahavishnu. Just before the creation of this material world,
at the time of creation of this material world,
Krishna desires for its creation. At that time he takes form of Sankarshan. He expands himself as the form of Sankarshan, and then Sankarshan he takes the form of, he expands himself as Karanavshayi Vishnu. That is first Purush. And then this first Purush desires to create. Saha Ikshata, Maharaj is using this word. He desires. Then this desires take the form of a light. And this light, that Maharaj was saying, the shadow of this light, abhas of this light is called Jyotirling. Shambhuling. We see here so many people worshipping Lord Shiva in the form of Shambhuling. So this Shambhuling is now very well explained here by Maharaj, that when Mahavishnu desires for creation, this desire takes form of a light, and shadow of that light is called Shambhuling.
But light is pure and eternal.
And this light is eternal. This is not Shambhuling. What is Shambhuling? Shadow of that this light.
Semblance
of this light will be is Shambhuling. Then there is another semblance, and that is semblance of Rama Devi. Rama Devi is Vaikunth Pati's wife Lakshmi. Her shadow is Maya Devi.
Or you can tell that Rama Devi is power of Karna Vishayi Vishnu in this way.
Yeah.
But in a Shuddha soul.
So she takes the form of Yoni, and the meeting of this Shambhuling and Yoni, this cross creates this cosmos material world. And in order to understand this thing more comprehensively, Maharaj again saying that Mahavishnu, Pratham Purush, he has two types of potency. What is that two type of potency? Maharaj is explaining it. One is called Nimit and another is called Upadan. So this potency of Mahavishnu, it is of two kinds. One is called Nimit and one is called Upadana. The translation of these two words is, one is instrumental potency and one is material potency. Instrumental potency, Maharaj is explaining very clearly, I killed a snake with a stick. I killed. The desire of the person, the person who did it, is the instrumental cause. There are two types of cause, instrumental cause and material cause. So, the person who did it and desired it is instrumental, that is nimit karan, nimit prakriti. And I killed it with stick. Stick is material cause, the upadan karan, upadan prakriti. Similarly, Maharaj is giving another example that potter is making pots. Pot man is, I think potter is okay.
Potter
is making pots. The desire of potter is the instrumental cause to create and to make these pots. And all the instruments used to create those pots, like chakka, round, wheel, and mud, clay, water, etc. All those things are the material cause. Now the important thing is here, that this instrumental desire, that is Mahavishnu's potency, which is called Nimit Shakti, instrumental potency, this takes the form of Yoni, and Krishna's Upadan potency, that is material cause, material potency, it takes the form of, its shadow is takes the form of Shambhu Ling.
Mahavishnu Upadan or its limit to Kekvara Devasi. और एक किलो सृष्टि के प्रारंभ में कृष्ण ने ह्रास करने की असंकल्प किया. वृंदावन के बंशी भट्ट में संकल्प करते ही उनके बाम अंग से श्रीमती राधिका की लाडली शक्ति राधिका के रूप में और दाहिने तरफ से सदाशिव, ये सदाशिव का जगत में कैलाश और काशी इत्यादि में जो वास करने वाले हैं, यही रुद्र शिव जो है उन्हीं के लिए अंश या कला है सदाशिव. गोपेश्वर जो है वृंदावन में, ये स्वयं सदाशिव है. रघुनाथ दास गोस्वामी ने, गोस्वामियों ने इसका वर्णन किया है. हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने शायद ये किया है, वृंदावनामणि पते जय सोम सोम मौलि सनक सनंदन सनातन नारदेज्य भूईश्वर भज विलासी युगम द्विपदी प्रेम प्रयत्स नृपाणी. ये सदाशिव गोपीश्वर महादेव है. ये जीवों की मनोकामना पूर्ण करते हैं. यदि किसी को राधा निवा भक्ति होती है और गोपियों के जैसी सेवा कृष्ण की और राधा जी की प्राप्त करना चाहता है तो शंकर जी का आश्रय लेता है. गोपीश्वर महादेव सदाशिव जागृति के जो रुद्र है उनका नहीं, उनसे नहीं होता. भूतेश्वर महादेव, गोकर्णेश्वर महादेव, गलतेश्वर है, रंगेश्वर है, ये सब तो नहीं है.
पीपल है सर,
ये नहीं. कौन सदाशिव स्वरूप की स्वयं गोपेश्वर महादेव, इसलिए ये कहा गया. क्या वो
वृंदावनामणि
पते, वृंदावन का जो वन है उसके अवनि के पति है, उस वहां के जो वृंदावन के ये पति है, रक्षा करने वाले हैं, इसमें कि अशुद्ध तत्व न प्रवेश कर. कृष्ण ने ही और राधा जी ने उनको ये अधिकार दिया. वृंदावनामणि पते जय सोम मौले, सोमने चंद्र को शिव पर धारण करने वाले, सनक सनंदन सनातन नारदेव सनक सनंदन सनातन नारद देव्य नारद के भी ये
पूज्य है
पूज्य है और गोपीश्वर ब्रज विलासी युगान ब्रज विलासी जो कृष्ण है उनके चरणों में प्रेम को जथेष्ट प्रेम को देने वाले हैं ऐसे गोपीश्वर महादेव जी को हमारा नमन है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं मुदा गोपेन्द्रस्य आत्मज भुज परिसंग निधये स्फुरत गोपी वृंदैर जमीह भगवन्तं प्रणयति भजते तै भक्त्या
समभिलषितं प्राप्तं
चिरा यत्पीरे गोपीश्वरं अनुदिनं तं किल भजे। नंदनंदन श्री कृष्ण के भुजा द्वारा आलिंगित जो रत्न है भुजा का द्वारा आलिंगन ये रत्न है उस रत्न की प्राप्ति की आशा से कृष्ण प्रणयिनी जो गोपियां हैं जमुना तट पर स्थित भगवान सदाशिव का जो भजन करके अत्र अत्यंत शीघ्र ही अपनी अभिलाषा को पूर्ण होती हैं, हुई हैं, उनको विश्वर महादेव सदाशिव का मैं नित्य निरंतर भजन करता फिर से शब्द नंदनंदन श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्ति की आशा से कृष्ण की प्रणयिनी गोपियां जो हैं जिनकी निरंतर सेवा करती हैं और किनकी भजन करती हैं जो जमुना तट पर जमुनापुरी में सदाशिव भगवान का जो गोपीश्वर के रूप में अवस्थित है उनका भजन कर अत्यंत शीघ्र ही अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेती हैं या कर लिया है उनको भी सदाशिव का मैं ये उनका स्वरूप। अब शंकर जी का शुद्ध स्वरूप सदाशिव है जो पार्वती के साथ में मूल पार्वती के साथ में सब समय अपने लोक में कीर्तन करते हैं। विष्णु दूत पहले वहां पर उतरते हैं वहीं पर वो तो सदाशिव है। रामायण में लिखा तो वाल्मीकि रामायण में या पुराण में रामचंद्र जी रावण को विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर पहुंचे वहां ने रामेश्वर शिव की स्थापना की। स्थापना के बाद में वहां के जितने उपस्थित लोग थे उन्होंने देखा था रामिनी की प्रतिष्ठा करके और क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा यह रामस्य ईश्वर इनकी जय राम के ईश्वर की जय। किंतु वहां पर देवता वृंद जो थे वो तुम लोग ये ठीक तत्व नहीं जाता है जानते हो रामस्व राम राम भी ईश्वर है
और किसी भी ईश्वर
ये बहुदेवी समाज के अनुसार में उनको कहते दोनों ही ईश्वर है कोई किसी का आराध्य नहीं है एक ही तत्व। और शंकर जी की शिवलिंग फट कर आवाज आई ये सब दोनों बात विचार गलत है राम जस ईश्वर तत्पुरुष समास राम ही जिनके ईश्वर है इसलिए शंकर जी की बात थी। दो विचार होता है दो नहीं तीन एक तत्व विचार होता है एक माधुर्य पर विचार होता है और एक ऐश्वर्य पर विचार होता है। तत्वता विचार यह है कि सदाशिव जो है भगवान के अंश के अंश के अंश के कलाश सदाशिव है और उनकी छाया है रुद्र शंकर जिसके जगत में लोग पूजा करते हैं, भूतेश्वर रंगेश्वर ये सब। और ये तो हुआ तत्व। माधुर्य परमात्मा ने क्या, जब कृष्ण जब लीला के लिए उतरते हैं उस समय में शिव आराध्य आते हैं और कृष्ण जैसे मैया के पुत्र बन करके कुछ कर नहीं सकते, वहां पर ऐश्वर्य को छिपा देते हैं। तो कृष्ण के माधुर्य लीला में कृष्ण अपना ऐश्वर्य छिपा करके अपने भक्त की आराधना करते हैं। ये तो हुआ माधुर्य का विचार। और ऐश्वर्य का विचार क्या हुआ, कृष्ण शंकर जी के भी परमाराध्य करते हैं। इसलिए जगत में शंकर की महिमा प्रसारित करने के लिए उन्होंने ये सब लीलाएं की हैं कि अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी की तलाश में कृष्ण ने आराधना की, ये सब चीजें दिखलाएंगे। और कभी कभी ऐश्वर्य लीला में शंकर जी को बाणासुर के युद्ध में कृष्ण ने उनको परास्त कर दिया, ये ऐश्वर्य लीला हो गई द्वारका की। और माधुर्य लीला क्या हुई, रामचंद्र के रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं, मनुष्यों की नर्मद लीला जो कर रहे हैं,
खुद प्राप्ति के लिए जो उन्होंने किया वो भी
माधुर्य
तो ये सब लीलाए की हैं जिनका सामंजस्य साधारण आदमी नहीं कर पाते, इसलिए इनका सामंजस्य होना चाहिए। देखो शिव ऐसे हैं, सदाशिव या रुद्र शिव जी उनकी छाया भी अपनी स्त्री के साथ में नंगे रहते हैं, नंगे होकर भी अपनी पत्नी पार्वती जी को मां को सती को अपने अंक में ले करके बैठ सकते हैं, जगत के लोग धारणा नहीं कर सकते। किसी नंगी स्त्री का चिंतन करने से ही आदमी कहां पतित हो जाता है, या स्त्रियां भी नंगे पुरुष की चिंता करें तो उनका सब कुछ। किंतु शंकर जी का अपने सब समय अपने वहीं स्थित रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। श्रीमद् भागवत में इसका उदाहरण है, अपनी पत्नी को लेकर चित्रकेतु महाराज आए, सबका भाव से उन्होंने यह बात कही, ये साधारण लोगों के लिए उचित नहीं है ऐसा करना आपको। पार्वती जी बिगड़ गई, कुछ लोग शिक्षा दीजिए, शंकर को भी शिक्षा देने वाला कोई है, इसलिए बिगड़ करते साथ उन्होंने हंसते हुए साथ को ले लिया। शंकर जी ने कहा तूने क्या किया इस महापुरुष को जो मुख है, और उसको तुमने साथ दे दिया, वो तुमको साथ देता और साथ तुम्हारा नहीं लेता तो क्या होता, तुम्हारी क्या हो जाए। ये साथ को नहीं लेने में भी समर्थ है, पाप साथ को दूर करने में भी समर्थ, जैसे हनुमान इत्यादि तुमने बहुत काम किया। उन्होंने मुस्कुरा करके वो ले लिया। शंकर जी का कुछ उसे बिगड़ना बनता नहीं, स्त्रियों को देखने से काम नहीं आता, इसलिए इस लौकिक क्रिया में उन्होंने काम दे वो भी जला दिया। काम को जलाने का तात्पर्य उनके हृदय में कोई काम भी नहीं है, किंतु स्त्री के साथ रहते हैं लोग समझते हैं कि इनके अंदर में भी काम, कामना नहीं है, उनको संसार की वासना नहीं है, उनमें लस्ट नहीं है, यह दो वासना है। दैट इज व्हाई व्हेन सो मेनी अस्पृश्यता केम इन द नाइट एलो ही वाज
स्प्रिंग टाइम
ही सॉ टुवर्ड्स कामदेव एंड ही वाज
बोर्न इनटू एसेस।
शंकर जी में कोई कामना नहीं, ये समझो भगवान के भक्तों में स्त्री के साथ में रहे न रहे, नित्यानंद जी हजार स्त्री के साथ में रहे, कृष्ण के साथ में रहे, कृष्ण यदि करोड़ों स्त्री के साथ में हैं, उनके भक्त लोग भी लाखों स्त्रियों के साथ में रहे, उनको कामना नहीं होती, ये जगत के लोग नहीं समझ पाते, अपने जैसा उन्हें आरोप करते, उनकी का भी ऐसा नहीं करते। मोहि के रूप में संकट वो समझे कि भगवान ने इच्छा करके उनको ऐसा महिमा दिखलाने के लिए भगवान जी यदि मोहिनी रूप धारण कर ले
सब लोग मोहित हो
जाएंगे, मुग्ध हो जाएंगे, होते भी नहीं समझ सकेंगे। और की तो बात हुआ ना, उन्होंने वो बच्चे बन गए, गाय बन गए, सब कुछ बच्चे बन गए, गोपाल गए, और एक वर्ष तक बलदेव समझ नहीं सके। एक वर्ष के बाद में कुछ कृष्ण ने ही इच्छा की, अब तो वो तो जानना चाहिए सब सही ज्ञान
है।
So we have tried to understand the most complicated portion. I think that this will come in all magazines. English magazine and Hindi magazine. That how this creation takes place with the meeting of Shivling and Yoni. Now Maharaj is saying, just at the beginning of this creation, Krishna desired to perform Rasa dance. And when he desired it, then from his left side, Radha Rani was manifested. And from Swarup Shakti, Radha Rani, she was manifested. And from his right side, Sadashiv, the same Sadashiv who is Gopeshwar Mahadev, not Gopeshwar, Gopeshwar. Gopeshwar Mahadev. He was manifested. So Maharaj is clearly stating here that our prayer, which has been prayed by Srila Sanatana Goswami, this is prayer to Gopeshwar Mahadev, that is Sanatana, that is Sadashiv. And this prayer is to Sadashiv and demanding and asking for prem, love for Krishna. And Sadashiv in the form of Gopeshwar Mahadev, he can provide us this love. The highest type of love can be provided by Sadashiv, Gopeshwar Mahadev. And Shankar, Rudra, so many other Shiva, which is being worshipped here by common people. This Shiva is semblance or shadow of Sadashiv, not the original form. This Shankar, which is being worshipped here by local people as Pipaleshwar Mahadev, Bhuteshwar Mahadev, and many other forms, this Shankar cannot provide us that high class of love of death. Then the prayer of Sri Sanatana Goswami is to Sadashiv, that is Gopeshwar Mahadev. Maharaj is explaining this prayer that Vrindavana Manipate. In this,
they know the meaning.
They know the meaning. So, then Maharaj is giving another prayer prayed by Sri Raghunath Das Goswami. And in this prayer, Raghunath Das Goswami is rendering his obeisances to that Gopeshwar Mahadev, to that Sadashiv, who is at the bank of Yamuna, giving the most eternal ratna, jewel, to gopis. Gopis are worshipping this Gopeshwar Mahadev to attain the highest class of jewel of their life. And what is that jewel? The most special treasure of their life, embrace of Shri Krishna. This is being desired by gopis, and they are asking for this benediction from Gopeshwar Mahadev at the bank of Yamuna, and Gopeshwar Mahadev is giving this thing, giving this benediction to Gopi. Such Gopeshwar Mahadev, I am rendering my obeisances. This is the prayer of Srila Raghunath Das Goswami. So Maharaj is clarifying here that this Sadashiv Tattva, from whom we are worshipping in the form of Gopeshwar Mahadev, he can give us that high class of Braj Bhav praise. Now, Maharaj is now again explaining that this Sadashiv always lived with Mool Parvati, original Parvati, her his consort. You call consort?
Yeah.
Consort. And now Maharaj is explaining in this that in Ramayana and in Puran it is stated that Lord Ram, he manifested Rameshwar Mahadev,
established
at the south end of India, we know it, Rameshwar Mahadev. And when he was worshipping Rameshwar, at that time common people around there.
While he was worshipping him, that by his mercy I can cross the sea.
See.
But really Krishna, Ram was so much powerful to jump or cross in a second. But he saw to a general person, oh, by the mercy of Sankar, I may cross this. Oh, and let's see.
So the common people were thinking that this Rameshwar Mahadev, being established by Lord Ram, is the in fact Lord of Ram. So the name goes as Rameshwar. At that time, demigods, they appeared and they said, no. This Rameshwar Mahadev and Ram, they both are the same and there is no any difference. Both are Ishwar. It is not only that Rameshwar is Ishwar of Ram. Common people think, and they are thinking, many people still think like this here, though they are not intelligent, that Ishwar of Ram is Rameshwar. But it is not like this. Demigods are saying, no, Ram and Rameshwar, that is Lord Shiva, both are Ishwar and the same. There is no any difference. But at the same time, that Rameshwar, Lord Shiva manifested from that Rameshwar Mahadev, from that Ling. And he said, no, try to understand this fact that Rameshwar Mahadev means
one is Lord of Shankar.
Lord of Shankar is Ram. And hence, Ram is the Lord, is called Rameshwar. That is, Ram is the Lord of Lord Shiva. So his name is Rameshwar. Now here Maharaj is giving very, very enlightening points. There are three ways to understand the theory. They are called three vichar, three thoughts. One is called tattvagat vichar. That is the thought, that is the principle according to
theory.
And then it is called aishwaryagat vichar. That is principle according to opulence and according to
awe and reverence.
Opulence. And third is madhurya vichar, in which
narvat
lila vichar. The thought in which according to when Lord is acting as, when Lord is performing his pastimes according to ordinary human being. So when we talk about tattvagat vichar, that is the theoretical aspect of the principle. According to this principle, Shiva, Lord Shiva is kala of Krishna's manifestation, his expansion. Lord Shiva is kala of Krishna's expansion. Krishna's ansh, Krishna's part, and he is very fractional part of Krishna's expansion, according to the theoretical principle. Now, when we take Aishwarya Bhav, according to this, Krishna is the high class of worshipable deity of Lord Shiva, and Lord Shiva is always worshipping Krishna. But when we take Madhurya Vichar, where Krishna is performing human-like pastime, at that time Krishna plays another role. Krishna is very, very tiny and very small young child. He cannot do anything. And Mother Yashoda is giving, feeding him and doing everything. At that time, Mahadev comes, Lord Shiva comes, and he is giving benediction to this child. At that time, Lord Shiva becomes worshipable to this child because Krishna is performing human-like pastime. See, in this category, there are many pastimes being performed by Lord. So when Ram is also worshipping Lord, in order to cross this ocean, this is also Madhurya pastime. This we have to take. Here Ram is thinking himself as an ordinary human being and he has to perform such an uphill task to cross that ocean, and therefore he is worshipping Lord Shiva so that he may give him power. Similarly, it has been seen in our Quran somewhere that Krishna was worshipping Lord Shiva to get a child. So these all are the Madhurya aspect of the principle. So one who does not know, he is unable to categorize who is who. We have to very clearly understanding on this point. Now, Lord Shiva is very, very strong. He has no lust. Maharaj is explaining, he lives without any clothes, nearly, in that naked form. So, and Parvati sits on his lap. But they are having no any lusty desire. Maharaj is explaining, an ordinary person, ordinary living entity is here. If a girls and boys are together, if a man is not wearing clothes, then it will create lust in the heart of female and vice versa. But this fall down does not take place in case of Lord Shiva and Parvati, though they are living together in any position and posture. And it is shown there in Srimad Bhagavatam that once Lord Shiva was giving lecture and Parvati was sitting on his lap, at that time Chitraketu, he was also very exalted devotee of Krishna and quite friendly with Lord Shiva. In friendly gesture he said, "Oh, how is this the position and posture you are giving lecture?" And Parvati could not understand it because Parvati knew it. How it is possible that the people are thinking that when Parvati is sitting on the lap of Shiva, they are having a
thing. And she was naked.
And she was naked. How can these people are understanding that Shiva is having lusty desires in his heart, because lust doesn't come near to Shiva at all. So how this man Chituketu? Chituketu was friendly with Shiva. He never meant to say that lust is coming in his heart. He was saying this is not the way to deliver the lecture. Anyway, Parvati gave him a curse. At the time, Maharaj is explaining that Lord Shiva chastised Parvati. Why did you give him a curse? Because he is such an exalted devotee. Look, his advancement and his elevation. He has accepted your curse, though he has full strength to revoke it, to repel it, and rather he can give curse to you, but he is readily accepting your curse. This is his highness and advancement. Maharaj said, because lust does not stay near to Lord Shiva, therefore, Lord Shiva, it is said in the material world, either Sadashiv or the Shiva here, the manifestation of Lord Shiva, that Chaya, shadow of Lord Shiva, which we call Shankar, he is also staying here with Parvati. They don't have lust in their heart at all. They don't fall down because of lust. That is why he That is why when Kamdev came to disturb Lord Shiva's meditation, and Shiva just opened his third eye and burnt that calm them into a One thing was, very very good question was asked by Kavita Didi. She said that how could it happen when Mohini Rupa was taken form by Lord, and at that time Lord Shiva was attracted towards that Mohini Rupa. Here Maharaj is explaining, this Mohini Rupa was taken by Lord Krishna himself, and Krishna can do anything. Krishna just created a desire of lust in Lord Shiva, and then he showed his Mohini form, and this whole thing took place. When Krishna's pastime takes place, his maya is so strong, even Baldev Prabhu was bewildered. He posed for 1 year together. He took so many forms of cowherd boys and calves and all, but Baldev Prabhu could not notice it. So Krishna's maya is so much strong, it can do anything. But in himself, Lord Shiva has got no any lust.
Rest will spin after that. एक समय आप उनका तत्व का मैं विचार दे रहा हूँ, शंकर जी का और कृष्ण का तत्व का विचार. शंकर जी ने एक असुर को वरदान दिया कि तुम जिसके शरीर सिर पर हाथ रखेगा, छाती पर वो जल करके प्रश्न किया. वो असुर ऐसा था जो पार्वती जी का रूप देखकर के मोहित हो गया, सोचा कि उन शिव के वक्त से शिव को जलाकर मैं पार्वती जी का बन जाऊंगा पति या बिलाभेट बन जाऊंगा. इसलिए उसने तपस्या की और शंका की नकारी है. वो मस्तु जिसके कलेजे पर हाथ तुम देगा वो जल करके भस्म हो जाएगा. वो साथ ही साथ में हाथ उठाया और शंकर जी की छाती पर हाथ रखने लगा. अरे तू, हमने तुमको वर दिया, तुम हमारे ऊपर नहीं ऐसा कर रहा. वो पार्वती जी के तरफ में लेकर के दौड़ा उनके पीछे पीछे, शंकर के पीछे, और शंकर त्रिलोकी में चारों तरफ से भगे भगे फिरे. हाथ गए, मृछाला छूट गई, नंगे बन गए, दमरूप छूट गया, नंगे काम दौड़ रहे हैं. और उन्होंने प्रभु को, अपने प्रभु को स्मरण किया, प्रभु आप मेरी रक्षा कर. अपने आराध्य, उनके आराध्य कौन है? भगवान है. भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करके महापुरुष बनते हैं,
ब्रह्मचारी.
आपने ये किया, यहाँ पर इसलिए उपाख्यान का कि शंकर के भी आराध्य भगवान का विचार था. दूसरा, शंकर जी बाणासुर के आराध्य है. शंकर जी आराध्य है बाणासुर के. उसको सहस्त्र पूजाएं हैं, हजारों पूजाएं हैं. उसकी बेटी को हमारे प्रद्युम्न जी हार गया है, वो पकड़े गए, मणासुर ने पकड़ लिया, लात नहीं उसी समय माल नहीं, उनको कैद करके उनसे युद्ध होने लगे. उस समय कृष्ण को समाचार मिला नारद से, नारद अपनी सेनाओं को लेकर वहां पर पहुंचे, कृष्ण पहुंचे और मणासुर से युद्ध होने लगा. बाणासुर के बातों के बातों में उसके सहस्त्र भुजाओं में दो को छोड़ करके, चार को छोड़कर असत भुजाओं को काटता रहा और उसका गला भी काटने वाले थे. इतने वो शंकर शंकर करके चिल्लाने लगे, मेरी रक्षा करो. उस समय शंकर जी आए पाशुपत अस्त्र और अपने सारे अस्त्रों को लेकर के और कृष्ण से भीड़ गए, किसको मारिए मत. उस समय में कृष्ण जी शंकर जी को भी अपने चक्र से प्रभावित कर दिया, वैष्णवास्त्र से, और उनको मोहित कर दिया एकदम. ज्वर में कांपने लगे शंकर जी, थक थक करके. उसमें पार्वती जी ने देखा, अरे ये तो हमारे प्रभु को और बाणासुर दोनों को खत्म करने, हमारे भक्तों को भी, हमारे पति को भी, तो एकदम कुछ नंगी सी होकर के अर्ध नंग में और कृष्ण के सामने आते, तो कृष्ण ने वो त्याग दिया। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे इस पुत्र का आपसी हाथ मत काटिए और हमारे प्रभु को भी छोड़ दी, तो कृष्ण ने उन दोनों को छोड़ दिया। ये शिव के भी आराध्य हैं, शिव को भी परास्त कर सकते हैं, शंकर जी उनके अत्यंत प्रिय हैं, शंकर जी उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, इसलिए शंकर जी के भी पार्थ ये कृष्ण है, इस चीज को समझो। कृष्ण के कृपा से ही ये गोपीश्वर महादेव वृंदावन में बैठे हुए हैं। और भी एक समय द्वारका में रहते थे कृष्ण, कभी कभी दुर्बी और कभी कभी अधिकांश रूप में चतुर्भुज धारण करके सब काम करते थे, चतुर्भुज चार भुजा लेकर के, कभी कभी रानियों के साथ में, कभी कभी युद्ध में ये चार भुजाओं के साथ में। उसको देख करके एक पंडित वासुदेव नाम का व्यक्ति, उसने दो लकड़ी के अपने हाथ बना दिए, लकड़ी किसी तरह का, वो चार भुजा धारण कर लिया और कहने लगा कि मैं असल वासुदेव, वो नकल वासुदेव है, और कृष्ण को अपने संदेह वाहक के द्वारा बताया उनकी सभा में जाकर के, तुम अपना वासुदेव नाम छोड़ दो और ये दो हाथ हटा लो, मैं चतुर्भुज वासुदेव। कृष्ण हंसने लगे और उस पर उन्होंने आक्रमण किया। उस समय काशी नरेश, वो भी उसका साथी था पंडित वासुदेव का, उसने उसके लिए दोनों की सेनाएं मिलित होकर के कृष्ण से युद्ध करने के लिए आए। उस समय कृष्ण ने अपने पत्र से उसको, तुम्हारा ही पंडित वासुदेव को काशी नरेश का वध करके उसका भीमुंड काशी में गिरा करके और काशी को जला करके भस्म कर दिया। उस समय शंकर जी भगे हुए नवदीप के हरिहर क्षेत्र में, और फिर वहां से चले गए जगन्नाथपुरी के पास में एकाम्रकानंद, जहां पर की
भुवनेश्वर
जी का नाम है, वहां पर भाग करके चले गए और उनका शरण लिया जगन्नाथ जी का, यहाँ पर महाप्रभु जी का, तब वो बचे। इस तरह से ये सब शंकर जी के लिए आराध्य तत्व का यहाँ पर शरण किया गया। शंकर जी सब समय राम राम करते हैं और उसी से वो भी मुक्ति देते हैं। ये राम कौन है? शंकरसन राम, उसी मंत्र में ये चित्त है शंकरसन, और इसी के नाते चित्र के जी उनके गुरु भाई चित्रकेतु जी लोग महापुरुष हैं, इसे कम नहीं है कि जो उनके गुरु हैं। इसलिए राम राम कौन सा, इसके अंतर्गत में ये सीताराम वाला भी राम आ जाता है, तो असल में भी सीताराम के भी राम के भी मूल अंशी है शंकरसन, वो बलदेव जी। इसलिए बलदेव जो राम है उनका ये सब समय स्मरण करते हैं और इसकी मुक्ति लोगों को देते हैं। महामंत्र में जो राम नाम है, ये राम नाम शंकरसन से भी नहीं है और बलदेव प्रभु से भी नहीं है, परशुराम से भी नहीं है, इस रामचंद्र जी के लिए भी है। किसके लिए है? राधा रमयति, राधा रमयति इति राम अर्थात कृष्ण। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए, ये जो राम है ये शंकर जी के उपास्य है। और भी ऐसा देखा जाता है कि रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण को लेकर के दंडकारण्य में गए चित्ररूप के पश्चात। वहां पर रावण ने शूर्पणखा के माध्यम से, शूर्पणखा के कारण ही रावण छल से मारीची को मृत बनाकर और सीता जी को हत्या किया। इसको हाथ लेके अवसर सीता जी तो चली गई अग्नि में प्रवेश कर गई और नकल मायक सीता जी को हाथ करके ले गया, उसने समझा कि वही है। उस समय में रामचंद्र जी
लौकिक नर्मद लीला में हासिते पागल बन गए और पेड़ों से पशुओं से पक्षियों से जम वो गोदावरी से मृगों से जो सीता जी के बड़े प्रिय थे सबसे पूछने लगे हाँ सीता मेरी कहाँ गई वहां कहाँ गई। उसी क्षण में शंकर जी कैलाश से सती को अपना साथ लेकर के उसमें उनका दर्शन करने के लिए ये भगवान लीला कर रहे हैं दर्शन करा और रोते हुए राम को लक्ष्मण के साथ में देख करके बड़े प्रसन्न हुए ऐसी लीला कर रहे हैं और उनको बहुत दूर से परिक्रमा किया
लीला हो गए
और साष्टांग प्रणाम किया। सती जी ने कहा उनको संदेह हुआ अरे जो स्त्री के लिए कामुक होकर के रो रहा है लीला कर रहा है और उसको आप महादेव शंकर जी होकर के उसको प्रणाम कर रहे हैं ये राम कौन है। पर प्रभु नहीं सकता ये तो दशरथ का पुत्र है इसकी चोरी चली गई स्त्री चोरी कैसे चली जाएगी यदि आपका ब्रह्म है तो उसकी स्त्री तो चोरी नहीं जा सकती और दूसरी बात चोरी चली गई तो जानता नहीं कहां है और उसके लिए विराट करता है कामों की भांति सर्वांतर्यामी नहीं है इसलिए उनको शंका हुई और शंका से पूछा मैं तो जानता हूं कि आपका परब्रह्म जो है वो भगवान राम है किंतु ये कौन है जिसके लिए आप एक कामुक महापुरुष के लिए जो अज्ञानी है इसको प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा जी दोनों एक है ये लीला कर रहे हैं इसे इनको दंडवत प्रणाम उनके अंदर में शंका हुई शंका होने पर शंकर जी ने कहा जी तुम परीक्षा ले लो ठीक है मैं कैसे परीक्षा लू ये सोच करके खड़ी हो गई और शंकर जी एक बरगद के पेड़ के नीचे आगे जाकर के खड़े हो गए। इतने में उन्होंने सोचा कि कैसे परीक्षा लू सोचा जैसे इस समय में रो रहा विलाप कर रहा अपनी स्त्री के लिए मैं सीता जी का रूप धारण कर लू जब यदि साधारण आदमी का तो हमको दौड़ेगा सीते मिल गई सीता मिल गई और हमें आलिंगन पास से बात मिलेगा सीता जी को उस समय समझ आएगी ये साधारण और यदि हमको पहचान लिया उस रूप में भी तुम्हें समझाऊंगी बात मिलेगा सीता का रूप धारण करने ठीक एकदम सीता जी बन गई उनका स्वर भी वैसा ही बन गया सब कुछ चाल चलन भाव सब कुछ और जाकर के राम के सामने खड़ी हो गई किंतु राम ने देख करके भी नहीं देखा हासिते करके दूसरी तरफ में चले ये भी सीता बनी हुई उधर ही चले किंतु उनको छोड़कर के तीसरी जगह ऐसे घूमते रहे इनको मानो देखा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद में फिर इनके सामने गई रामचंद्र जी कहते भगवती देवी प्रभु कहां चले गए आप अकेले यहां पर क्यों हैं कैसे जान दिया मैंने तो सीता का धारण किया तो ये साधारण आदमी बस छठ उनके चरणों में गिरी जब ही चरण में गिरी तो देखा जैसे राम और सीता जहां देखती है तब पेड़ पौधे मनुष्य जितने भी हैं जितने जहां देख रही है बस वही ये देखती है क्या सीता देखा हम हमसे सीता कभी अलग नहीं होती जब देखा आंखें बंद हो गई और रोमांच हो आया और एकदम रोती ही विलाप करती उनके चरणों में गिर गई। जब गिर गई तो उस समय में रामचंद्र जी ने फिर वैसा ही नाट्य आरंभ कर दिया हासिते तू कहां है और सीता के अंतर ध्यान कर दिया हासिते विलाप करने उसको देख करके उन्होंने भी प्रणाम किया लौट करके मुख सूखा हुआ डरती हुई शंकर जी के पास में पहुंची। शंकर जी ने देखा पूछा ये परीक्षा कर लिया परीक्षा की तो ये बोली ये प्रभु आपने जो कहा हमारे आप गुरु हैं पति हैं इससे आपको परीक्षा में क्या लूंगी झूठ बोला गुरु से एक तो महाचरण में अपराध किया गुरु के बातों में शंका किया और इधर गुरु से भी जो पूछा उसको नहीं बदलाया ये क्या हुआ गुरु के चरण में महा अपराध हुआ इस कारण से क्या हुआ
अपना शरीर भी छोड़ना पड़ा उनको इस अपराध के कारण, फिर दूसरे शरीर में तपस्या करते पार्वती रूप में। इसलिए ये जो कृष्ण हैं या राम हैं, ये कौन हैं? उनके आराध्य हैं, शंकर जी गुरु के रूप में है। तुलसीदास ने भी, वाल्मीकि ने भी बंधों राम और सीता किस रूप में, शंकर और पार्वती जी को गुरु के रूप में पढ़ा। वैष्णव में ये शंभु है। और विष्णु, परम विष्णु कौन है? ये कृष्ण है, राम है। इन चीजों को समझ करके और तब इन चीजों का समाधान करके खूब अच्छी तरह से भजन के शंकर की पूजा कर सकते हैं, कोई भी बात नहीं है। गोपीश्वर के रूप में, किंतु भगवान के सेवक के रूप में करो। भगवान उनको मतलब भगवान इस रूप में लो, गुरु के रूप में, कि वो भगवान के अत्यंत प्रिय है, अशिषी हो। अन्यथा उनको भगवान के रूप में लोगे तो भस्म स्तूप जैसी गति होगी, नाम अपराध हो जाएगा। इस चीज को ख्याल रखते हुए भगवान का भजन। भगवान क्या, कौन से विष्णु है? सदाशिव शंकर की जय, शिवरात्रि की जय, गौ प्रमाण। आप यू कैन हियर फ्रॉम रामचंद्र प्रभु इन डिटेल नाउ आर बीइंग ग्रेटेड।
दक्षिणा